नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान जो आपका बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे याद आता है एक वाक्य, एक प्रसंग। स्वामी विवेकानंद जी काशी की गलियों में घूम रहे थे, अचानक कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए। उनकी जेब फूली हुई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि बंदरों को कि शायद इसमें चने रखे हुए हैं, किताबें रखी हुई थी। वास्तव में बंदर उनके पीछे, स्वामी जी आगे आगे। उन्होंने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया तो बंदरों ने भी अपनी गति तेज कर दी। स्वामी जी ने भागना शुरू कर दिया तो बंदर भी उनके पीछे भागने लगे। ये सारा वाक्य एक गृहस्थी अपने घर की छत से देख रहा था। उसने कहा, स्वामी जी भागिए मत, इन बंदरों का सामना कीजिए। स्वामी जी की जैसे चेतना जागृत हुई, वो खड़े हुए, पीछे मुड़े और एक योद्धा की तरह उन्होंने उन बंदरों का सामना किया। तो जब बंदरों ने देखा कि ये डर नहीं रहे हैं, ये तो अब अडिग होकर के खड़े हो गए हैं, तो बंदर एक एक करके भाग खड़े हुए। कहने का भाव, जब समस्याएं हमारे पीछे आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो कई बार हम बहुत विचलित हो जाते हैं, भागने लगते हैं। लेकिन यदि हम उनका सामना करें तो समस्याएं एक एक करके दूर होती चली जाती हैं। वास्तव में समाधान आपको यही सिखाता है और हमेशा हमें यही प्रेरणा देते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राता जी, आज ही मैं ये प्रसंग पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि समाधान के लिए ये बहुत ही प्रेरक होगा, इसलिए आज मैंने दर्शकों के साथ और आपके साथ इस प्रसंग की चर्चा की कि सामना करना सचमुच समस्याओं को दूर भगाने का एक बहुत सुंदर तरीका हो सकता है।
बिल्कुल, और सामना करने के लिए भी शक्ति चाहिए, क्योंकि अगर मनुष्य के अंदर शक्ति नहीं है तो वो सामना नहीं करता, भागना चाहता है। तो देखिए, आज तक मनुष्य ने बहुत विकास किया और विशेष रूप से बुद्धि का विकास बहुत किया है। बौद्धिक लेवल पर आज मनुष्य जहां है उतना शायद पहले कभी नहीं था
जी,
परंतु उसने अपनी मन की शक्तियों पर कभी ध्यान नहीं दिया और न उसको इस बात का एहसास है कि मन की शक्तियां बहुत बड़ी शक्तियां हैं और समस्याओं को समाधान करने में केवल बौद्धिक शक्ति नहीं, मन की शक्तियों की बहुत जरूरत है। और अगर मन बहुत विचलित है, मान लो कोई समस्या सामने आ गई और मन बहुत परेशान हो गया, बहुत निगेटिव हो गया, तो बुद्धि भी अपनी कार्य करने की शक्ति को खो देती है। मनुष्य को जो सोचना चाहिए वो तब नहीं सोच पाता, कुछ का कुछ सोचेगा, वो उसकी बुद्धि विचलित हो जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है मन की शक्तियों को बढ़ाना, जो कार्य मेडिटेशन से ही होता है, क्योंकि मन की शक्ति को बढ़ाने का कोई तरीका विज्ञान के पास नहीं है, मेडिकल साइंस के पास नहीं है। इसलिए जब एक मनुष्य को ये सुनने में आता है कि मन की शक्तियों को बढ़ाओ, तो वो सोचता है कैसे बढ़ाएं।
ब्रदर जी, अमेरिका में 200 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च हो रहे हैं, और उन्होंने ये पाया है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, उनकी आंतरिक शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में ब्रदर जी अभी उन्होंने मेडिटेशन सेंटर खोल दिए हैं कि जो भी इंप्लॉयज आएंगे पहले वहां मेडिटेशन करेंगे, उसके पश्चात फिर अपने कार्यक्षेत्र।
हाँ, इससे यही होगा कि मेडिटेशन करने से उनका चित्त शांत होगा और मन के शांत होने से उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, और मन जब व्यर्थ से मुक्त हो जाता है तो मन की शक्तियां बढ़ने लगती हैं। इसको लोग मेडिटेशन कहते हैं, लेकिन अगर मन को सर्वशक्तिवान से जोड़ दिया जाए तो न केवल शक्ति बढ़ेगी, लेकिन सर्वशक्तिवान की शक्तियां हमारे मन में प्रवेश करने लगेंगी और तब हमारा मन बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए राजयोग मेडिटेशन उन सभी मेडिटेशन से एक यूनिक चीज है। उसमें केवल मन को शांत करना सिखाया जाता है, कुछ अच्छा चिंतन दे दिया जाता है, कहीं कुछ मंत्र दे दिए जाते हैं, कहीं किसी विशेष ऑब्जेक्ट पे ध्यान एकाग्र करना सिखा दिया जाता है, परंतु इससे भी मन शांत होता है और उसकी शक्तियां बढ़ती हैं, लेकिन बहुत थोड़ी। अगर सर्वशक्तिवान से जुड़ जाए मन, तो उसकी संपूर्ण एनर्जी का फ्लो हमारी ओर होने लगता है और हमारा मन बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। इसलिए हम राजयोग की बात बहुत ज्यादा करते हैं।
बिल्कुल दत्ता जी, तो वैसा ही हो गया कि यदि पावर हाउस से हमारा कनेक्शन हो जाए तो फिर हमारे पास लाइट की कोई कमी ही नहीं रहेगी, शक्तियों की कोई कमी नहीं रहेगी और समस्याएं हमारे लिए तो एक खेल की तरह हो जाएंगी।
बिल्कुल, और तरह का मेडिटेशन करना ऐसे जैसे दीपक जलाने, थोड़ा प्रकाश तो उससे भी होगा
जी,
लेकिन सर्वशक्तिवान से रिलेशनशिप कर लेना, उसकी शक्तियों को अपने में समाने लगना, ये तो सचमुच ऐसे ही है जैसे लाइट हाउस बन जाना। और यदि कोई मनुष्य ऐसा करता है तो उसके पास समस्याएं रहेंगी भी नहीं। मेरे पास ऐसे बहुतों के अनुभव हैं, हजारों लोगों के तो अनुभव हैं ही, जिसमें उनकी मनोस्थिति श्रेष्ठ हुई, उन्होंने राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास किया, अपने चित्त को शांत किया और समस्याएं रही नहीं।
बिल्कुल,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि समस्या होती नहीं, हमें वो समस्या प्रतीत होती है। ऐसे भी कई उदाहरण रोज सामने आते हैं कि मनुष्य छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा समझकर उसे समस्या का रूप दे देता है। मेरे पास एक करंट अभी अभी का एक लड़की का अनुभव इसका बहुत अच्छा आया, जो अभी 4-5 दिन पहले बहुत दुखी हो गई और इतनी डिप्रेस हो गई कि सब कुछ छोड़कर मरने के लिए तैयार। मैंने उसे बात की तो पता लगा कि समस्या तो है ही नहीं, केवल वो सोच रही है कि कहीं वो ऐसा न कर रहा हो। देखिए, उसकी बड़ी समस्या थी कि उसको यदि एक व्यक्ति जिससे उसके मन में घृणा है
जी,
उसका नाम यदि इसके सामने कोई ले दे तो 3 दिन तक इसका मूड ऑफ रहता है। मैंने कहा वो व्यक्ति तो आपसे पावरफुल हो गया, इसका नाम लेने से आप परेशान हो जाती हैं। तो मनुष्य इतना सेंसिटिव हो गया है कि वो समस्या है नहीं लेकिन समस्या फील करता है।
कई बार अनुमान भी लगाना रहता है जी, हमारे लिए बहुत ज्यादा समस्या कारक बन जाता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो मेरे लिए ऐसा ना कर रहा हो। भले बातें कुछ भी ना हो लेकिन अनुमान एक बहुत बड़ी समस्या और रोग का रूप ले लेता
है। कम से कम 20-25% जो समस्याएं संसार में है वो इस तरह के वेस्ट थिंकिंग से ही है
जी।
इसलिए जो मनुष्य बहुत विवेकशील है, बिल्कुल वाइज पर्सन है और जो हर बात पे ज्यादा नहीं सोचता
जी,
थोड़ा धैर्यवत है, पेशेंटली काम करता है, तो सचमुच उसको लगता है जीवन समस्याओं से मुक्त है। जीवन लाइफ इज एन एंजॉयमेंट, हमें इसको एंजॉय करना है। ये समस्याएं वमस्याएं कुछ नहीं है, जो हो रहा है होने दो, आ रही हैं बातें, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही, जाने दो, वी हैव टू एंजॉय एवरीथिंग, उसका ये एटीट्यूड हो जाता है।
बहुत सुंदर। तो समय वैसे भी परिवर्तनशील है, गंगा में कितना पानी बह चुका है, नदियों में कितना पानी बह के जाता है, हमेशा ही एक प्रकार का ही पानी, एक प्रकार की परिस्थिति सिचुएशन नहीं रहता। बहुत सुंदर आपने कहा जीवन के लिए यदि ऐसा नजरिया हो जाए कितना सुंदर हो। ब्रदर जी, आपने एक बात छेड़ी है इससे पहले कि मैं प्रश्नों को लूं, कि राजयोग की बात आपने कही, पावर हाउस से हम अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। ब्रदर जी, संसार में बहुत प्रकार के योग प्रचलित हैं, कोई किसी प्रकार का योग करता है, कोई किसी प्रकार का करता है, तो एक कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन सा योग करें। तो अन्य जो योग हैं संसार में, राजयोग उनसे किस प्रकार भिन्न है?
हाँ, देखिए कौन सा योग करें ये क्वेश्चन उठना तो बड़ा नेचुरल है किसी के मन में, क्योंकि बहुत सारी बातें उसे सुनने को मिलती हैं
जी।
लेकिन अगर योग सुप्रीम से हो जाए तो हर व्यक्ति मानेगा कि वो सर्वश्रेष्ठ है। किसी मूर्ति पे ध्यान लगाना, कुछ अच्छा चिंतन करना, यहां ध्यान लगाना, श्वासों पे ध्यान लगाना, अपने मन को ऑब्जर्व करना कि मेरे मन में क्या चल रहा है, ये सब भी मेडिटेशन के तरीके हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को बता दिया जाए कि एक तरफ ये तरीके हैं, दूसरी तरफ है कि सर्वशक्तिवान से मन बुद्धि का कनेक्शन, कम्युनियन, रिलेशनशिप, कनेक्शन जोड़ दिया जाए तो कौन सा श्रेष्ठ रहेगा, तो हर व्यक्ति ये उत्तर देगा कि भगवान से यदि हम जुड़ जाएं तो उससे बड़ा मेडिटेशन कोई और नहीं हो सकता। इसलिए जिन्होंने और तरह के मेडिटेशन किए हैं उनका रस उन्होंने चख लिया है, उनके थोड़े बहुत तो अनुभव हर एक को होते ही हैं, वो कर लिए हैं, अब जरा राजयोग के जो सुपर एक्सपीरियंस हैं उनकी ओर बढ़ें तो आप ही महसूस हो जाएगा कि कौन सा योग श्रेष्ठ है। हमारे पास ऐसे लाखों ही लोग आए होंगे जिन्होंने पहले राजयोग सीखने से पहले अन्य बहुत सारे योगों का अभ्यास किया हुआ था, भिन्न भिन्न जहां भी उनको मेडिटेशन का पता चला, चाहे वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन महेश योगी का हो, चाहे वो ओशो के द्वारा कुछ सिखाया जा रहा हो, चाहे भारत हिंदू धर्म में भिन्न भिन्न पद्धति, मंत्र योग है, श्वासों पर है, भिन्न भिन्न संकल्प दे
के
योग, मंत्र योग
अग्रभाग
में करते
हैं, ज्योति जगा कर,
तो बहुतों ने ये सब कर लिए। क्योंकि जो योग का शौकीन होता है उसे इच्छा होती है कि जहां से जो मिले वहां से ले लेना चाहिए, तो बहुतों ने करके देखे। और जब राजयोग किया तो ये लाखों लोगों की अनुभूति है कि राजयोग में ये सभी योग समा जाते हैं। राजयोग से ही मनोबल बढ़ता है और राजयोग से सबसे बड़ा फायदा होता है कि मनोविकार नष्ट होते हैं, चित्त शुद्ध होता है, इसलिए चित्त शांत रहने लगता है। तो जो जितना अच्छा राजयोग का अभ्यास करते हैं उसके बाद उनका मन वैसे ही बहुत शांत रहने लगता है क्योंकि मनोविकार छूट जाते हैं। तो इस तरह से ये सुप्रीम योग हो गया।
बिल्कुल, तो अन्य प्रकार के योग का अनुभव तो सबने कर ही लिया है लेकिन राजयोग का भी एक बार अभ्यास करके देखें। और आपने बहुत सुंदर बात कही भ्राता जी, शायद अन्य योगों में ये संभव ना हो कि मनोविकार इससे नष्ट हो जाते हैं, चित्त शांत हो जाता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो आपने कही कि सुप्रीम जो परम पिता है उनसे यदि कनेक्शन जुड़ जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि तो मुझे लगता है कि संसार में और कुछ हो ही नहीं सकता।
देखिए, योग सिखाने वाले कोई कंडीशन रखते नहीं, कुछ भी खाओ, मांस मदिरा खाओ पियो, क्रोध करते रहो, लोभ करते रहो, करप्शन में हिस्सा लेते रहो, लेकिन मेडिटेशन करो। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि अगर मनुष्य ये सब पाप कर्म करता है, हम इन्हें पाप कहते हैं, तो उसको मेडिटेशन में सफलता होगी कहाँ। तो राजयोग मेडिटेशन में तो हम ये कंडीशन ही रखते हैं कि पहले चित्त को शुद्ध करना ही है, कुछ राजयोग से शुद्ध हो जाएगा लेकिन हमें कुछ चीजों की शुरुआत भी करनी है। कम से कम हमें इच्छा तो करनी पड़ेगी ना कि हमें अपने क्रोध को छोड़ना है, हमें ये दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, हमें सात्विक भोजन ही स्वीकार करना है, हमें ये धारणा अपनानी पड़ेगी कि हमें बुरे लोगों के संग में उठना बैठना नहीं है, हमें गंदे साहित्य का अध्ययन करना नहीं है। तो ये सब धारणाएं बहुत आवश्यक हैं, तो चित्त शुद्ध होता जाता है।
प्रताप जी, ये सारी चीजें जो आपने कही, मांस मंदिरा का सेवन ना करना, या करप्शन की बात आपने कही, या अच्छे संघ की आपने बात कही, तो ये सारी चीजें आज के समाज में बहुत कठिन लगता है ये सब करना। खान पान में आप जानते हैं ऐसी विकृतियां आ गई हैं, शराब हो या मांस मदिरा हो या करप्शन की बात हो या बुरे संघ की बात हो, ये सारी चीजें जैसे एक जीवन में शामिल हो गई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब ये बातें कही जाती हैं ब्रह्मा कुमारी इसके माध्यम से कि भाई ये सब करना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग बिदक जाते हो कि भाई हमारा जो योग है वही ठीक है, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, राजयोग के लिए तो हमें ये सब छोड़ना पड़ेगा।
बिल्कुल ऐसा भी होता है, बिल्कुल ये सत्य बात है। लेकिन जिनको योग के श्रेष्ठ अनुभव करने होते हैं वो इनको फॉलो करते ही हैं। आज संसार में कितने लाख लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इवन क्रिश्चियंस लोग जिनका जीवन ही दूसरे तरह का था, ब्रह्मचर्य का तो जहां प्रश्न ही नहीं है, सेलिबेसी उन शब्द उन्होंने अपने डिक्शनरी से हटा दिया है, वेजिटेरियन फूड सुनकर तो वो हंसी मजाक करते हैं,
शराब के बिना
वो रहते नहीं, लेकिन उनमें से बहुत लोगों ने अपना जीवन सात्विक कर लिया है। क्योंकि एक बार मनुष्य को आत्मा की प्योरिटी का ज्ञान मिल जाए तो उसी चीज से जिसका को वो आज तक एंजॉय करता था उससे उसको बदबू आने लगती है। तो अनेक लोगों ने शराब की बोतलें फेंक दी, अनेक लोगों ने नॉन वेज न लेने का सदा के लिए प्रण कर लिया, ऐसे हमारे पास बहुत उदाहरण है। क्योंकि इसके बिना जो योग सिखाए जा रहे हैं उससे मनुष्य को ज्यादा फायदा होगा भी नहीं, क्योंकि ये चीजें मन को भटकाने वाली हैं। इसलिए भले ही हमारे पास कम लोग आए, हमें इसकी जरूरत नहीं कि हमारे पास करोड़ों लोग राजयोग सीखने वाले हों, लेकिन हमारे पास यदि 100 लोग भी बहुत स्ट्रांग आते हैं जो अपनी योग शक्ति से, अपनी पवित्रता की शक्ति से संसार को हिला दें, तो हम ऐसे ही लोगों को चाहते हैं।
बिल्कुल, लेकिन भ्राता जी जैसे लगातार कार्यक्रम में आप राजयोग की बात कर रहे हैं कि राजयोग सीखें उससे समस्याएं दूर होंगी, लेकिन जो लोग हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे दर्शक वर्ग हैं, वो लोग यदि इन चीजों का सेवन कर रहे हैं तो ये करते हुए भी क्या राजयोग का अनुभव किया जा सकता है?
देखिए, पहले उन्हें राजयोग शुरू करना होगा। राजयोग में जो सुखद अनुभूति होती है उससे उन्हें स्वयं रियलाइज होता है आई एम ए प्योर सोल। तो अपने माइंड को प्योरीफाई करने के लिए, अपने माइंड को एम्पावर करने के लिए वो आपे छोड़ देते हैं स्वइच्छा से, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं किसी के कहने से कोई छोड़ता नहीं।
मतलब पहले राजयोग का अभ्यास करना शुरू करें वो, भले ही वो चीजें ले रहे हैं तो योग से उन्हें वो शक्ति प्राप्त होगी जिससे उनके अंदर ये इच्छा पैदा होगी कि,
क्योंकि ये चीजें तब तक मनुष्य नहीं छोड़ता जब तक उसको सेल्फ रियलाइजेशन न हो। मैं कहूं कि भाई ये सब छोड़ दो, वो कहेंगे कैसा आदमी है ये, लाइफ का
मतलब जब तक हमें कोई अच्छी हाँ, चीज नहीं मिलती तब तक हम उससे कम जो चीज है उस चीज को नहीं छोड़ते हैं।
बिल्कुल। तो लोग इसी में आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, चिंताएं बहुत बढ़ रही हैं, किसी के काम धंधों में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, तो लोग शराब पीना शुरू कर लेते हैं कि कम से कम सो तो जाएं सुख से, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि शराब से उन्हें कितना नुकसान हो रहा है, उसके सारे शरीर के अंग डैमेज हो रहे हैं, बहुतों के लीवर नष्ट हो रहे हैं, अल्पकाल में मृत्यु हो रही है और ब्रेन की शक्तियां नष्ट हो रही हैं। ऐसा व्यक्ति एक मेरे पास आया जो योग का बहुत शौकीन था, ये विदेश का था, क्रिश्चियन, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन एक सेकंड नहीं होती थी। तो मेरे पास आया, मैंने उससे बातचीत की और उसने मुझे बताया मैंने बहुत ज्यादा शराब का सेवन किया है जिंदगी में। मैं समझ गया इससे शराब से इसके ब्रेन की शक्तियों को डैमेज कर दिया है, तो एकाग्रता हो ही नहीं रही। बहुत मुश्किल कहीं उसकी 5-7 सेकंड तक एकाग्रता आगे बढ़ी। तो जब मनुष्य इन चीजों का सेवन करता है तब तो वो इन्हें एंजॉय करता है, लेकिन अंततः इसका जो रिजल्ट है बड़ा डेंजरस होता है। आगे आने वाले समय में मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ करना चाहता है वो असमर्थ रहता है।
बिल्कुल। तो भ्राता जी, जो भी हमारे पास समस्याएं हैं, चाहे वो टेंशन है, डिप्रेशन है या अन्य प्रकार की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी विकृतियां आ गई हैं हमारे पास, राजयोग का अभ्यास वो प्रारंभ करें, भले ही कैसी भी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब ब्रह्मा कुमारी ये नहीं कहती कि इन सब चीजों को छोड़ो, लेकिन आप राजयोग का अभ्यास शुरू करें तो स्वतः ही मन में इच्छा पैदा होगी और आप उनसे दूर होते चले जाएंगे। भ्राता जी, राजयोग के बारे में एक और विशेष बात, क्या केवल कॉन्सेंट्रेट करना ही राजयोग है या फिर राजयोग कुछ और है?
देखिए, राजयोग कंसंट्रेशन तो राजयोग का एक फैक्टर है, लेकिन राजयोग में सबसे पहले हमें आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान लेना होता है। ये केवल कंसंट्रेशन नहीं, ये ज्ञान योग भी है जिसमें हमें आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान मिलता है। दूसरा ही शब्द इसके लिए हम देंगे, ये प्रेम योग भी है जिसमें हमें परमात्मा के लिए और स्वयं के लिए बहुत प्रेम क्रिएट करना होता है अपने अंदर। तीसरी बात, हमें परमात्मा से अपना रिलेशनशिप जोड़ना है इसमें, यानी वो हमारा है। जैसे हमारे यहाँ परिवार में संबंध हैं और परिवार के आसपास संबंध हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, भगवान हमारा पहला रिलेटिव है, परम पिता है वो, हमारा परम शिक्षक है वो, हमारा परम सदगुरु है वो, हमारा खुदा दोस्त है, तो पिता है ना वो हमारा जी। तो वो हमारे सबके ऊपर है, तो उससे हमें रिलेशनशिप जोड़ना होता है। फिर हम उसका चिंतन करते हैं, परमात्मा चिंतन, फिर हम उससे बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन,
मतलब भगवान से भी बातें की जा सकती हैं। तो क्या आंसर भी मिलता है?
बिल्कुल, उससे आंसर भी मिलता है। इस आंसर को प्राप्त करने के लिए ही बुद्धि को प्योरीफाई करना होता है, ताकि उसके जो आंसर हैं, क्योंकि उसके आंसर मुख से नहीं आएंगे, मन से आएंगे, मन में आएंगे, तो हमारा मन जितना प्योरीफाई होगा उसके इंट्यूशंस को, उसके वाइब्रेशंस को हम कैच कर पाएंगे।
बिल्कुल। तो इसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। जैसे हम किसी और से समस्याओं का हल पूछते हैं, वैसे ही संभवतः राजयोग के माध्यम से हम डायरेक्ट भगवान से ही अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं।
मेरे सहित और कुछ हमारे यहाँ श्रेष्ठ योगी अच्छे हैं जो अपनी हर समस्या का, अपनी हर बीमारी का समाधान डायरेक्ट अपने परम पिता से पूछ लेते हैं। वो सुप्रीम सर्जन भी है और उसके पास शक्ति भी है हर समस्या को हल करने की, और वो ज्ञान का सागर भी है। वो हमें बता देता है तुम गलती कहां कर रहे हो जिसके कारण समस्या आई है, और इस चीज को ठीक करो तो ये समस्या ठीक हो जाएगी। और जब हमारा उसे कनेक्शन हो जाता है तो वो भी हमारी केयर करता है। आखिर हम उसके बच्चे हैं। एक बाप कैसे चाहेगा कि मेरे बच्चे समस्याओं के चक्रव्यूह में उलझ गए हों? तो वो अपनी ओर से जितना अच्छे से अच्छा होगा हमें मदद भी करेगा।
बहुत सुंदर। भ्राता जी, आप ब्रह्मा कुमारीज में योगी राज के नाम से जाने जाते हैं, आपका योग बहुत ही सुंदर है, श्रेष्ठ है। मैं जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या आई हो, चाहे शारीरिक तकलीफ या अन्य तकलीफें, और जब आपने ऐसे ट्यून किया हो अपने आप को योग के माध्यम से, जब आपको ऐसे परमात्मा से डायरेक्ट कोई समाधान मिला हो, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के साथ आप अवश्य।
मुझे याद आ गया, मैंने सोचा तो नहीं था, बात 76 की है जब हमारा जो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है बहुत छोटे लेवल का था
जी।
हम इसे रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं, तो मैं यही शब्द अब यूज करूंगा। हमारे यज्ञ में बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं थी, ना कोई डॉक्टर था, ना कोई दवाई होती थी, तो मेरे साथ ही सेवा करने के लिए एक होम्योपैथी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट आया हुआ था बिहार से
जी।
तो मुझे पेट दर्द बहुत रहता था और उस दिन मुझे पेट दर्द बहुत था। हमारे यहाँ दवाई तो होती नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, किससे हम पूछें। पेट दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं अपने परम पिता से